کیپشنز جو ہیں بڑی الفاظ کچھ اور ہیں, مگر پروگرام میں اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو پلیز ان چیزوں کو چیک کریں. ہم چاہے فلسطین کی بات کر لیں, وی جسٹ وانٹ ٹو میک منی آن ایوری تھنگ, مگر میں یہ کہتی ہوں کہ حقائق کے بارے میں بات کی جائے. پلیز آپ اپنا سر یوٹیوب چینل بنائیں بتائیں, اور میں چاہتی ہوں کہ ایوری بڈی مسٹ جوائن ہم, سبسکرائب دیٹ سو دیٹ یو کین گیٹ اوتھینٹک انفارمیشن. جی سر,
اوتھینٹک پروفیشنل آپ کو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں اس میں اسے اس کو سنسنی خیزی نہ پھیلائیں, اس میں غیر ضروری الفاظ نہ استعمال کریں, چونکہ میں پروفیشنل براڈ کاسٹر ہوں, میں نے یہ سیکھا ہوا, چاہے ریڈیو تھا یا ٹی وی تھا.
جی سر,
یہاں میں نے بہت سارا کام ٹی وی میں بھی کیا, بیورو چیف تھا میں سماج ٹی وی کا جب ہم نے شروع کیا. سو ہم نے کوشش, ابھی بھی میں کوشش یہ ہے کہ میں پروفیشنل انداز میں کام کریں, کسی کو گالم گلوچ نہ کریں. ابھی میں نواز شریف صاحب کہتا ہوں,
میں نے کہا لوگوں کو بڑا اعتراض ہے اس بات پہ. دیکھیے کسی کو ریسپیکٹ دینے میں آپ اپنے خاندان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یس وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دی ایشوز, وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ پرسنالٹیز, اینڈ وی شوڈ ناٹ کہ کسی کو ہیوملیٹ کر کے میں اپنے مقاصد اچیو کر لوں گی. ہیوملیشن کبھی مجھے میری منزل تک نہیں پہنچائے گی. وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ایشوز. آپ سر اپنا یوٹیوب چینل بتائیے پلیز.
بس امتیاز گل یوٹیوب آفیشیل ہے, اس پہ آپ مجھے تلاش کر لیں, ملے تو ہوپ فلی کہ یہ پروگرام بھی ہم وہاں بھی شیئر کر لیں گے
یوٹیوب آفیشیل. زیشان بلکہ آپ کو چاہیے کہ وہ لنک آپ ڈال دیجئے گا. اور
میں نے آپ کو ایک دو سٹوریز بھی بھیجی تھی, تو اس میں سے وہ آپ کو مل جائے گا.
سر وہ میں بالکل ڈالتی ہوں. میں آنےسٹ ٹو گاڈ, مطلب میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں. آئی جسٹ وانٹ پیپل ٹو فالو the right path, do not go for the sensational news. Sir, آپ کا بہت شکریہ. میں بلکہ یہ جیو پولیٹیکل پوزیشن کے لحاظ سے آپ کے ساتھ پورا پروگرام کرنا چاہوں گی. میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈو گیو اس ٹائم.
جی انشاءاللہ ضرور. تھینک یو ویری مچ.
بہت شکریہ جناب امتیاز گل صاحب کا. دیز آر گریٹ پرسنالٹیز, اور آنےسٹ ٹو گاڈ میں صرف ان کے سامنے نہیں کہتی, میں آئی مین اٹ کہ پاکستان میں جتنے ایماندار لوگ ہیں نا, سروائیو وہ کرتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے, آج سے 5 سال بعد, 7 سال بعد, 10 سال بعد لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں خرچ کر کے, پیپل ول میک منی آن اٹ. تو پلیز لک آفٹر یور سیلف. سر آپ کا شکریہ ونس اگین. اجازت دیجیے گا, میں کوشش کروں گی کہ اتنے فائن شخص سے آپ کی دوبارہ اور بار بار ملاقات کرا سکوں. آمین. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
عائشہ یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے.
10 جگہ کیوں, ایک ہی جگہ ہے فاطمہ گروسرز.
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں فاطمہ گروسرز, مسالے, تازہ سبزیاں, پھل, حلال گوشت, میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی. گروسری کا سارا سامان ساز و آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی. میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز, 512 برسٹل روڈ, ویسٹ آف مسز ساگا, 9058487000. فاطمہ گروسرز, سب سے زبردست.
ویلیج ٹیسٹ, اونٹاریو کا سب سے بڑا پاکستانی بفے, 40 سے زائد آئٹمس کے ساتھ. انجوائے کریں ہمارے ڈیلیشیس مینی کو, کڑھائی, کریز, باربیکیو, باربیکیو پلیٹر, رولز اینڈ مچ مچ مور. اور اب ڈیلی ڈنر بفے اور ویکینڈ برنچ بفے بھی. پارٹی رومز یا کیٹرنگ سروسز کے لیے کال 9052323663, 6477744888. ویلیج ٹیسٹ.
جی صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو امتیاز گل صاحب سے بات چیت بہت پسند آئی ہوگی. اٹ واز ناٹ سینسیشنل, ٹروتھ پہ بیس کرتے ہوئے یہ تمام کی تمام انفارمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ہمارے ان تمام اسپانسرز کا جن کے توسط سے ہم پروگرام پیش کرتے ہیں. گاڑی کی انشورنس کے لیے, گھر کی انشورنس کے لیے راجہ بادشاہ کا نام لیا کرتی ہوتی ہوں. بہت شکریہ بہت سے. کل بھی مجھے ایک بھائی نے کال کر کے پوچھا, تھینکس الاٹ. راجہ بادشاہ میرے ساتھ ہیں. راجہ جی گڈ مارننگ سر, کیسے ہیں آپ؟
جی گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, تھوڑی ایوننگ بھی گڈ مارننگ.
ایک وہ ینگ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ سوچتا ہوگا مائی اولڈ ہے اور یو نو واٹ, اس کا دماغ خراب ہے. شام کے وقت کہہ رہی ہے گڈ مارننگ
ینگ بچے کا. بادشاہ جی ینگ بچے کا ان کا مطلب تھا کہ میں سامنے بیٹھا ہوں.
अच्छा मैं समझे मैं मेरी बात कर
राजा को रानी से प्यार हो गया, मगर राजा बादशाह ऑल स्टेट इंश्योरेंस के साथ है. इट्स अ वेरी रिलायबल कंपनी. आप इंश्योरेंस के बारे में पता कीजिएगा. राजा जी, हमारा टाइम इन दिनों में थोड़ा सा ना बड़ा ही इससे, अभी इतना खूबसूरत इंटरव्यू आप ही के तवस्सुत से गया है. घर की इंश्योरेंस है, ये गाड़ी की इंश्योरेंस है, रिन्यूअल का वक्त आने का है, पूछ लीजिएगा. $1775 यानी $25 काट, $1800 तुसी बचा सकते हो. और फिर ब्लैक फ्राइडे की सेल, रामबाग वो जो घर की माई है ना, मैं भी अपने बेटे को कह रही थी, मेरा दिल करता मैं भी एक
रंबा ले लूं.
हाँ बस आप, शी इज अ मेड एट होम, क्लीन्स एवरीथिंग अंडर द बेड, अंडर द काउच, अंडर द एवरीथिंग. तो $1775 $25 काट, $1800.
एक चीज आपको ड्रॉबैक बता दूं उसका, वो ये कि जब वो थक जाती है ना तो किसी बेड के नीचे जाके छुप जाती है, आप ढूंढते रहे उसको मिलती नहीं वो.
अच्छा, अब माजी जी मालूम ही आदमी, यहाँ से बहुत से लोगों को पता लगे होगा. खुदा की कसम मेरे पास तो अभी तक इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो खरीद सकूं, मगर इस दफा मैंने जरूर खरीदना. सुना है $300 ऑफ हुए हैं आजकल, मगर उसमें भी बड़ी वैरायटी है. राजा बादशाह जी ऑल स्टेट इंश्योरेंस के साथ. सर जी, क्यों आपसे रब्ता करें और आपसे रब्ता, आप बोलते मेरे लिस्नर, आई लव देम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. वट डू यू हैव स्पेशल कि अगर वो आपसे रब्ता करें तो गाड़ी या घर की इंश्योरेंस में कस्टमाइज्ड सर्विस आप दे सकते?
जी जी बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं. स्पेशल आपके क्लाइंट
तो एडा लंबा सा ठंडा सा लै के गल की थी, तो मैंने पहले ड्रा
था साल है, तुसी ब्रेक दो थे, मैं तो कल
अब वो ना मैंने आना, अब वो ना मैंने इन दिनों में स्टूडियो आना छोड़ दिया. मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड सी, मैं ना स्टूडियो आना छोड़ता सी. वो मेरे एक बहुत प्यारे 4-5 लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं. कल रात को वक्त से कॉल उनकी दोबारा आई. सैयद खालिद वजीर, अ वंडरफुल जेम ऑफ अ मैन, 40-45 साल से कनाडा में रहते हैं. तो मुझे कहने लगे, माय सिस्टर इज आल्सो ए ग्रेट लिसनर ऑफ योर्स, शी इज इन टोरंटो, I request you please come back to the channel, to the station. I said okay. और वजीर जी, मैं आज आपकी वजह से आई हूँ, तो देखिए राजा बादशाह को मेरे आने पे एतराज है.
नहीं नहीं, मुझे एतराज नहीं है. वी वर मिसिंग यू अ लॉट, डेफिनेटली. ये बात उन्होंने अच्छी की है, वो सब की उन्होंने नुमाइंदगी की है.
जी सर, बताइए कि एक बड़ा खूबसूरत फीचर है आपकी ऑल स्टेट में कि फॉरगिवनेस का प्लान भी है, कस्टमाइज की बात है. आप क्विकली कवर कर लें.
हाँ, मैं क्विकली कवर करता हूँ. जो आपने $1775 की सेविंग बताई है, जी बिल्कुल, आपके पास अगर दो गाड़ियां हैं, एक घर है, आप ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव ओंटारियो लाइसेंस, आप मुझसे कॉल करके कोट लें, आपको ये सेविंग मिलेगी. प्लस जो कस्टमाइज वाली आपने बात की थी ना आल्फा जी, तो अगर आपकी नीड है, आप मुझसे डिस्कस करेंगे आपको चाहिए क्या, मैं भी आपको बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा. जहां पे जितनी सेविंग हो सकती होगी डेफिनेटली उसको करेंगे. क्लेम फॉरगिवनेस जो है वो बेस्ड ऑन फोन क्वालिफिकेशन, सर्टन आपका पीरियड होना चाहिए इंश्योरेंस हिस्ट्री का, उसके बाद आपको फर्स्ट क्लेम फॉरगिवन होता है. अगर आप वो इंडोर्समेंट डालना चाहते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल है जो जो लोग क्वालिफाई करते हैं. फिर उसके बाद माइनर कन्विक्शन सरचार्ज भी है, जिसके अंदर फर्स्ट माइनर टिकट भी फॉरगिव हो जाता है. वो हर किसी के लिए अवेलेबल है, एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव एन एक्टिव टिकट. तो जरूर आप तक करें जी.
अपना नंबर दीजिए सर
जी,
अपना नंबर दीजिए.
नंबर मैं देता हूँ, ठहर जी जरा 2 मिनट. जी नंबर है जी, मैं आपसे देखे जानबूझ के मैं आपको तंग करता हूँ, आप लोग भी थके हुए होते हैं.
ओह माय गॉड.
647-290-3773 ये मेरा फोन नंबर है. ये कॉल करें, मैसेज करें, वॉइस मैसेज छोड़ें, मैं रब्ता कर लूंगा आपसे. अगर आपका रिन्यूअल आ गया है, आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर की क्या प्राइस होगी, या रिन्यूअल के बगैर आपको लगता है कि यू शुड शॉप अराउंड, तो आप मुझसे कॉल करके, नो एप्लीकेशन कॉल, यू डोंट हैव टू टेक इट इफ यू डोंट लाइक इट. सो जरूर आप तक करिए,
कॉल कर लीजिएगा. वैसे राजा बादशाह साहब, मैं आपकी सहूलत के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अपने दफ्तर में, स्टूडियो में भी बहुत से लोग انتظار کر رہے ہیں مردی کیوں نہیں. ابھی راجہ بادشاہ نے ایک لفظ کہا, میں ایک پولیس کی جو نیوز آتی ہے اس کو دیکھ رہی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ایک ینگ لڑکا ماجد بھائی, اس کے اوپر بہت بار کنوکشن چارجز ہوئے اور اس کا لائسنس جو تھا نا وہ ریووک, وہ سسپینشن تھی, ہی کوڈنٹ ڈرائیو, مگر وہ ہر بار ڈرائیو کرتا تھا. ابھی بھی کمیونٹی سیفٹی کے لحاظ سے پتا چلا کہ ہی واز ان, الٹیمیٹلی پولیس نے اس کو اریسٹ کیا. ناؤ ہی از بہائنڈ دا بارس, ناٹ فار 6 months, آئی تھنک فار اے لانگر پیریڈ, بیکاز ہی کوڈنٹ. تو کوشش کریں کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو یا تو اپنی ٹکٹ کو ریزالو کریں اور پولیس کے ساتھ پنگا مت کیجیے گا, بیکاز دس از آل اباؤٹ روڈ سیفٹی, اٹس آل اباؤٹ روڈ سیفٹی. آل سیٹ کے ساتھ راجہ بادشاہ 6472903773 2903773. بہت شکریہ راجہ جی.
نو پرابلم. ایک دفعہ وہ بولے نا پنجی کٹ 18, کیا بولتی ہیں وہ
25 ڈالر کٹ 1800 ڈالر دی بچت ایک سال دے وچ, جسٹ ان ون ایئر, اگر آپ کی دو گاڑیاں اور ایک گھر ہے.
جی بالکل.
آپ نے مجھے کریکٹ نہیں کیا, آپ مجھے کہتے ہوتے ہیں دو گھر اور ایک گاڑی.
جی جی آپ مائی بولتی رہی.
6472903773. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.
ایک اور انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یاسر نقوی 25 اور 26 تاریخ کو لبرل کی طرف سے جو اونٹیریو کا نیا لیڈر آف دی پارٹی لبرل کا چوز ہونا ہے, اس کی ووٹنگ 25 اور 26 نومبر کو, یہ سیٹرڈے اور سنڈے, ہفتے اور اتوار, یہ جو کمنگ سیٹرڈے سنڈے ہے اس پہ ہے, اور یہ صبح 2 بجے, دوپہر 2 بجے سے لے کے شام کے 7 بجے تک ہوگی. یو مسٹ کاسٹ یور ووٹ, یو مسٹ کاسٹ یور ووٹ. اگر آپ کریڈینشلز پہ بات کرتے ہیں, ٹاک اباؤٹ کریڈینشلز, ٹھیک ہے, تو یاسر نقوی آف کورس یہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں اور انہوں نے اپنا الیکشن جو ہے وہ اوٹوا سے جیتا تھا. اس سے پہلے نہیں, انہوں نے الیکشن جیتا تھا, ممبر پارلیمنٹ تھے. اس سے پہلے ہاؤس آف کامنز میں نقوی واز ایکٹیو ان اونٹیریو پروونشل پالیٹکس, سرونگ ایز دا فرسٹ وزیبل اونٹیریو, جو پروونشل ہمارے جو پروونس کی پالیٹکس ہے اس میں ہی واز اونٹیریوز پروونشل پالیٹکس میں سرونگ ایز دا فرسٹ وزیبل مائنورٹی اٹارنی جنرل. پروونس ان اونٹیریو, میرا خیال ہے یہ کیتھلین ون کا شاید زمانہ تھا, پروونس ان اونٹیریو میں ہی واز اٹارنی جنرل, بگ ڈیل, دا فرسٹ وزبل مائنورٹی. دا مین ہیز اے گریٹ نالج آف اونٹیریو لیگل پوائنٹ آف ویو سے. تو اس کے بعد پھر یہ چلے گئے فیڈرل کی طرف اور پھر وہاں پہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہے. تو میں وہی کہہ رہی, سرونگ از دا فرسٹ وزبل مائنورٹی اٹارنی جنرل 2016 سے لے کے 2018. اس کے علاوہ منسٹر آف کمیونٹی سیفٹی رہے, کریکشنل سروسز رہے, اینڈ منسٹر آف لیبر بھی رہے. ہی ریپرزینٹڈ اوٹوا سینٹر ان دا
لیجسلیٹو.
تو سو ہی ڈز ہیو اے گریٹ ڈیل آف ایکسپیرینس آف دس اونٹیریو, اور اونٹیریو کی جو لبرل پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ کی ووٹ جو ہے دیٹ از آن سیٹرڈے اینڈ سنڈے. آئی ریکویسٹ یو پلیز, اگر آپ نے ممبرشپ لی ہے تو یو مسٹ گو اینڈ ووٹ. دا ووٹنگ ٹائم از بٹوین 2 to 7. ڈو ناٹ ویسٹ یور, وہ جو آپ نے ممبرشپ لی ہے اس کو ویسٹ مت کیجیے گا, ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور جائیے گا. آپ کو لے کر کے چلتی ہوں, کمرشلز بھی ہیں, مگر فیاض ویلانا کی طرف لے کے جاتی ہوں. شازیہ جی کا ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے ٹاپ آف دا آور کا نام دے دیں, میں زبانی بول دیتی ہوں. شازیہ جی کا ایک انٹرویو ہے سلمان احمد کے ساتھ, جنون گروپ کے جو لیڈ تھے, اینڈ ہی واز امبیسڈر, پاکستان کے امبیسڈر بھی رہے ہیں یونیسیف کے ساتھ. سلمان احمد اپنی ایک فلم لے کے آ رہے ہیں, اس کا انٹرویو شازیہ جی کے ساتھ 5 بجے ہے, اس کو سننا مت بھولیے گا. That is at 5 o'clock. فیاض ویلانا صاحب کی طرف آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں. ٹاپ آف داور میں گرجندر جی ٹرک لیوب سینٹر جو ہیں ان کا بہت شکریہ. QTL کوئک ٹرک لیوب ہمارے اسپانسر ہیں ٹاپ آف داور کے, پلیز ان کو موقع دیجیے گا. اور کون کون ہے کوئکلی ان کا نام لے دیں.
راجہ بادشاہ سے بھی آپ نے,
راجہ بادشاہ سے میں نے آپ کی بات کروا دی.
سوڈی
فرنیچر, اگر آپ کو فرنیچر لینا ہے بلیک فرائیڈے پہ, یو کین ہیو گڈ ڈیلز, یو گاٹ ٹو وزٹ. دے ہیو ون لوکیشن آن دا کینیڈی روڈ, دیٹ از سوڈی فرنیچر. جائیے تو پلیز پروگرام ساز آواز کا ریفرنس ضرور دے دیجیے گا. اور کون ہے؟
فورڈ اسکیپ کا ہے اور اس کے بعد پھر لیسا کا.
گاڑی لینی ہے تو فورڈ کی گاڑی لینی ہے, شازیہ جی کو کال کر لیجیے گا, وہ بتا دیں گے آپ نے کہاں سے لینی ہے. یو کین گیٹ اے گڈ ڈیل ڈیفینیٹلی. اور اگر آپ نے کاسمیٹکس لینی ہے تو ہولڈ یور ہارسز, میں نے بھی دو تین چیزیں خریدنی ہیں. ایک بڑی اچھی ہے کریم دیٹ از سیل سم تھنگ, میرے پاس اس کی فوٹو ہے آپ کو دکھاؤں گی. تو لیسا کاسمیٹکس, سیٹرڈے سنڈے کو بھی سیل ہے, آپ نے لیسا کاسمیٹکس 80% برانڈ نیم جو پرفیومز ہیں ان کے اوپر 80% تک آپ کو سیل کا فائدہ ملے گا. فیاض ویلانا میرے ساتھ ہیں, وی ڈونٹ ہیو ویری مچ ٹائم. فیاض ویلانا صاحب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں. الحمدللہ نومبر از گون, دسمبر بھی گزر جائے گا, دنیا کا اور سال کا چھوٹا سے چھوٹا دن بھی 21-22 دسمبر کو گزر جائے گا, اور پھر انشاءاللہ جنوری سے ٹائم بڑھنا شروع ہو جائے گا, پھر ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کیا کریں گے. فیاض ویلانا صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. پاکستان کی دو تین چیزوں کو اور جو کچھ آپ کے دماغ میں کور کیجیے گا. ایک تو 18th ترمیم کے بارے میں, جس میں ایک شخص کو دو بار سے زیادہ بار وزیر اعظم بننے کی قدغن تھی, وہ ختم ہو جائے گی, کرنا چاہ رہے ہیں. مگر ایک چیز جو ہے کہ صوبوں سے اختیارات جو ہے نا, وہ جس میں کہا جاتا ہے کہ صوبے نالا ہوں گے. حالانکہ میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں کام کیا جاتا ہے وداؤٹ اے ہوم ورک, اور جب یہ صوبوں کو خود مختاری دی گئی تھی 18th ترمیم کے ذریعے, تو پہلے صوبوں کو تیار نہیں کیا گیا تھا. حالانکہ ہم کپڑے اتارنے میں اور ہم اپنی زبان کے استعمال میں مغرب کی پیروی کرتے ہیں. مغرب میں جب بھی کوئی حکومتیں آتی ہیں تو ان کے شیڈو منسٹرز ہوتے ہیں, اینڈ شیڈو منسٹرز کی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹو سی وٹ دیٹ ڈپارٹمنٹ از ڈوئنگ, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوم ورک کا فقدان ہے. فیاض ویلانا صاحب, you have all the time to cover all these subjects, اور of course court کے trial کے حوالے سے سائفر کا معاملہ اس کو بھی کور کر لیجیے گا.
السلام علیکم عرفہ جی اور ماجد بھائی, اور آپ کا تمام پروگرام دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. ٹھیک ہے, ہمارے پاس وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود کوشش کریں گے. اور ہمارا پروگرام لوگ اس لیے نہیں دیکھتے کہ انہیں ہمارے پروگرام سے کوئی تازہ ترین خبر ملے گی. تازہ ترین خبر بھی اگر کوئی آئے تو ہم وہ بھی شیئر کرتے ہیں, لیکن بیسیکلی انہیں ایک ایسا غیر جانبدار تبصرہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہم اوورسیز پاکستانی جس جو سوچ رکھتے ہیں, اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, کیونکہ پاکستان میں تو جو جرنلسٹ ہیں ان کا گلا تقریباً دبا دیا گیا ہے, جن کو زبان کچھ کو تو اللہ جنہ نصیب کرے, ارشد شریف شہید کو, باقی عمران ریاض کے ساتھ جو کیا گیا اس کی ابھی تک وہ بول نہیں پا رہے, لکنت ہے ان کے زبان میں, ان کو اس طرح ٹارچر کیا گیا, اور شاید ان سے کچھ لکھت پڑھت بھی اس طرح کی گئی کہ آپ باہر جا کے بولیں گے تو پھر ہم پہنچ جائیں گے, اٹھانے والے اٹھا لیں گے, تو شاید کوئی اس طرح کا بھی ہے. اللہ ان کو صحت اور زندگی دے, کوئی وقت نہیں, یہ مشکل وقت گزر جائے گا پاکستانی صحافت پہ, وہ بعد میں بول لیں گے. اس دوران ہم اوورسیز پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بولتے رہیں اور بلا تکان بولتے رہیں, وقت کی کمی کے باوجود کوشش کریں گے. اس وقت تازہ ترین صورتحال جو بنی ہوئی ہے وہ جو زیادہ انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ ہے عمران خان کے کیسز اور عمران خان کے کیسز کا فیوچر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مت بھولیں کہ نواز شریف کے کیسز اور نواز شریف کے کیسز کا فیوچر, اور ساتھ ساتھ جو ہلکی ہلکی تال پہ ڈھولکی بجا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد صاحب جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور بیہائنڈ دی سین وہ تانے بانے ملا رہے ہیں, ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. کیوں کہ وہ اس دور میں ہیں, اس تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ان کا پلان اے میاں نواز شریف والا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کامیاب نہ ہوا تو پلان بی کے طور پر بلاول بھٹو زرداری کو پیش کر دیا جائے گا, اور ہم وہاں گیٹ نمبر 4 یا گیٹ نمبر 8 جہاں سے بھی انٹری ملی ہم جی ایچ کیو پہنچ کے اور اپنی خدمت پیش کر دیں گے. وہ بالکل خاموشی سے چل رہے ہیں, وہ کسی قسم کے کہیں کوئی سینگ پھنسانے کی کوشش نہیں کر رہے, وہ خاموشی سے چل رہے ہیں. اور میاں نواز شریف کا اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ بن گیا جس طرح کا بن رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہے, ایک بات. دوسری بات, اگر کیسز ختم کیے بھی جا رہے ہیں تو اتنی دیدہ دلیری سے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس کا لیش بیک بہت برا آ رہا ہے, بہت برا تاثر بن رہا ہے. جو میاں نواز شریف صاحب لندن سے جب چلے تھے 18 ستمبر کو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریر کر کے, تو ان کا گراف تھوڑا سا بہتر تھا, 10-12% پہ وہ تھے. پاکستان پہنچنے کے بعد جب مینار پاکستان انہوں نے خطاب کیا تو وہ 18 ستمبر والی تقریر ٹوٹلی ان کی 180 ڈگری پہ چلی گئی تھی, اور ان کا گراف 12% سے نیچے 7-8% پہ آ گیا. اس کے بعد ابھی تک وہ ایک جلسہ نہیں کر سکے, اور مسلسل جو عمران خان پہ حملے کر رہے ہیں, ہر حملہ ان کا جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے, انکلوڈنگ تازہ ترین حملہ جو خاور مانیکا کا حملہ ہے, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کا گراف 12% سے کم ہوتے ہوتے 7-8 اور 5% پہ اب آ گیا ہے. باقی اپنے طور پر اتنے سرویز کرا کے دیکھ لیے ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں نے, ہمارے مقتدر حلقوں نے, ہمارے فیصلہ سازوں نے,
کہ کہیں سے بھی کوئی انہیں اچھا رزلٹ نہیں آ رہا. اب انہوں نے ہلکا وائز چترال سے شروع کیا ہے جو کبھی این اے ون ہوتا تھا, اب اس کا این اے ون نمبر نہیں رہا, شاید این اے ون اب پشاور کو دے دیا ہے انہوں نے. چترال سے انہوں نے شروع کیا ہے ہلکا وائز, تین ہلکوں کا وہاں سروے کرایا گیا ہے چترال سے, اپر دیر, لوور دیر اور چترال کا. تینوں جگہ پہ پی ٹی آئی اس وقت ٹاپ پہ ہے, اور پی ٹی آئی اگر کسی جگہ کم سے کم کوئی ہلکا تھا, جہاں کے عبد الاکبر چترالی جو جماعت اسلامی کے ایم این اے ہیں, اس سے پہلے یہ وہ ہلکا تھا جہاں نصرت بھٹو ایم این اے رہی ہیں پیپلز پارٹی کی شریک چیئر پرسن, اس ہلکے میں آج سروے جو تازہ ترین آیا ہے اس میں پی ٹی آئی 48% پہ ہے, 18% پہ مسلم لیگ نون ہے, اور جماعت اسلامی کہیں 22% پہ ہے, اور 1% پہ ہے پیپلز پارٹی. وہ پیپلز پارٹی جو آج 1% پہ ہے, کبھی وہاں سے نصرت بھٹو الیکشن جیتتی رہی ہیں, چترال والے نصرت بھٹو کو الیکشن جتواتے رہے ہیں. آج اگر وہ وہاں پی ٹی آئی بھی پیچھے, پیپلز پارٹی بھی 1% پہ آ گئی ہے, جماعت اسلامی کا سٹنگ ایم این اے ہے اور وہ 22% پہ ہے, مسلم لیگ نون اتنا زور لگانے کے باوجود اور ان کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود, لائک حکومت ہے پریکٹیکلی, بظاہر نہیں ہے, لیکن جو کام ہو رہے ہیں وہ سارے مسلم لیگ نون کی ہدایات کی روشنی میں ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت ہونے کے باوجود وہ ابھی 18% پہ آگے نہیں جا رہے, اور پی ٹی آئی 48% پہ ہے. تو اس لیے وہاں سے پھر لوور دیر اور اپر دیر میں تو پی ٹی آئی 60-70% پہ ہے. اب اس طرح کے بھی سروے کچھ مریم صفدر صاحبہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے مریم نواز شریف, جو مریم صفدر بھی کے لوگ کہتے ہیں بھول کے, مریم نواز شریف بھی, مریم نواز شریف نے کوشش یہ کی کہ کچھ سرویس کمپنی کرنے والی کمپنیز کو ہائر کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے پیسے لے لیں اور ہماری مرضی کا سروے کر دیں. اب ان کمپنیز کو بھی کچھ اپنی ساکھ کا خیال رکھنا ہوتا ہے, انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی, ان سرویس میں تھوڑے تھوڑے نمبر میاں نواز شریف کے زیادہ ہے, وہ سرویس کرا کے بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آگے رکھے مریم نواز نے, کہ یہ دیکھ لیں ابا جان اوپر جا رہے ہیں, لیکن انہیں یقین نہیں آ رہا, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے طور پر سروے کرائے ہوئے تھے, وہ مریم نواز کے کرائے ہوئے سرویس پر بھی یقین نہیں کر رہے. اب اس لیے میاں نواز شریف صاحب کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ میرے پیچھے سے کسی وقت بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہاتھ نکال دے گی. اب یہ بات انہوں نے ہلکی ہلکی کرنی شروع کر دی گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ ڈیو ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کوئی پتہ نہیں آندہ چند دنوں میں لندن اپنے ٹیسٹ کے لیے لندن چلے جائیں اپنے علاج کے لیے. یہ لندن علاج کے لیے نہیں جا رہے, آپ کو یاد ہوگا جب وہ 4 سال وہاں رہے ہیں کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ فلاں ہاسپٹل گئے ہیں, فلاں لیب گئے ہیں, فلاں ڈاکٹر نے انہیں وزٹ کیا ہے, یا انہوں نے فلاں ڈاکٹر کو وزٹ کیا ہے, یا فلاں ہاسپٹل کو وزٹ کیا ہے, ان کی ٹریٹمنٹ سب بھولی ہوئی تھی. اب یہاں سے پھر انہیں نظر آنا شروع ہوا ہے کہ شاید میں ٹریپ ہو گیا ہوں, شاید میں پھنس گیا ہوں, شاید مجھے پھنسانے کے لیے یہاں لایا گیا تھا, یہ تو ایکچولی مجھے پھر بیہائنڈ دی بار کریں گے, میرے خلاف پھر سختی کریں گے, اور مجھے کسی نے الیکشن نہیں لڑنے دینا. کیوں؟ کہ عمران خان بہت زیادہ مقبول ہے, اور عمران خان کی مقبولیت کا توڑ ان کے پاس ایک ہی ہے کہ مجھے بھی پیچھے کر دیں, اور میرے بھائی جان کو آگے کر دیں, یا بلاول بھٹو کو آگے کر دیں, یا اگر ان سب میں سے پھر بھی کامیاب نہ ہوئے تو کوئی پتہ نہیں وہ کسی وقت بھی شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی پہ ہاتھ رکھ دیں, ہاتھ رکھنے والے, تو میرا پھر پتہ کٹ جائے گا. اس لیے وہ شاید علاج کی ابھی سے انہوں نے وہ راگل اپنا شروع کر دیا ہے کہ میں نے ٹیسٹ کے لیے لندن جانا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی, دوسری بات خاور مانیکا کا انٹرویو جو ہے وہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں, ہمیں نہیں کرنی چاہیے بات, یہ انتہائی ناپسندیدہ فیل ہے کہ خاور مانیکا نے جو کیا, جو انٹرویو شازیب خان زیادہ نے کیا خاور مانیکا کا, جو خاور مانیکا نے انٹرویو دیا اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے, یہ چیزیں پبلک میں نہیں آنی چاہیے, یہ لوگوں کے ذاتی فیل ہیں, ذاتی معاملات ہیں, ذاتی زندگی ہے. لیکن اب چونکہ پاکستان بھر میں اس پہ بات ہو رہی ہے اور اس کا اثر ہماری سیاست پہ ہے, اس لیے ہماری مجبوری ہے, میرے جیسے بندوں پہ جو کبھی زندگی بھر کسی کی ذاتی معاملے پہ بات نہ کریں, میرے جیسے بندے کے لیے یہ مجبوری ہے کہ ہم بات کریں, کیونکہ سیاست کا اس سے ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے. ہم اس پہ نہیں کریں گے کہ اس نے کیا کہا, ہم اس پہ نہیں کریں گے کہ ان کا تعلق کیسا تھا, ہم اس پہ نہیں کریں گے کہ ان کا تعلق کیسا ٹوٹا, لیکن اس انٹرویو کے آفٹر افیکٹس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں. آفٹر افیکٹس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں, فار ایگزامپل کہ اس کا پولیٹیکلی کیا اثر ہوا, پولیٹیکلی پی ٹی آئی پہ کیا اثر ہوا, پولیٹیکلی عمران خان کو مزید لوگ عمران خان کی فیور میں گئے, لوگوں نے کہا شازیب خان زادہ تم نے بھی غلط کیا, جیو آپ پہ بھی, جس طرح پہلے پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ ان کو لان تان کر رہی ہے, مزید لوگوں نے اس میں لان تان میں اضافہ کیا. خاور مانیکا کو لوگوں نے برا بلا کہا کہ بھائی وہ تمہاری بیوی نہیں تھی, تمہارے 5 بچوں کی ماں تھی, اگر تم نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا کم از کم اسے اپنے بچوں کی ماں کے طور پر ہی اس کی تم رسپیکٹ کر لیتے. خاور مانیکا کو لوگوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا, اور اسپیشلی جب اسے اٹھایا گیا تھا تو کرپشن کے چارجز میں اٹھایا گیا تھا. اب کب ریلیز کیا گیا, کیسے ریلیز کیا گیا, نو بڈی نوز, لیکن اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ اگلے دن وہ ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دیتے ہیں, اور انٹرویو کس چینل کو دیتے ہیں, اس چینل کو دیتے ہیں جس کا عمران خان نے جیو کا 24 چینل جو 24 محسن نقوی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پنجاب کیئر ٹیکر चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी का चैनल 24 है, समा टीवी जो तरीके इस्तेकाम पार्टी के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल अलीम खान उनका है, और जियो मिर्च की रहमान का है। इन तीनों का इमरान खान ने एलानिया बाइकआउट किया हुआ है और अपनी पार्टी के लोगों को भी कहा हुआ है कि वहां अपनी अपीयरेंस ना दें, उनके साथ बीपर ना करें, उनके साथ बात ना करें, हमारा उनके साथ बाइकआउट है, लोग ना देखें। उस बाइकाट ज़दा पीटीआई के बाइकाट ज़दा टेलीविजन चैनल पर जाकर इंटरव्यू दिया, शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया, खावर मानेका का अपना ग्राफ खराब हुआ, लोगों ने खावर मानेका को बुरा भला कहा, पीटीआई को नुकसान हुआ। अब उसके मुकाबले में सियासी वेटेज कौन लेना चाहता था, वो पीएमएलएन थी, पीएमएलएन का मजीद उससे ग्राफ नीचे हुआ क्योंकि लोगों को वो सारी बातें याद आ गई कि मियां नवाज शरीफ साहब आप तो वही हैं जिन्होंने 1990 में लाहौर में आपको हुसैन हकानी जैसे छोटे कद के किरदार, प्रैक्टिकली उनका कद छोटा है मैं कहता हूं, छोटे कद के हुसैन हकानी जैसे लोग आपके साथ एडवाइजर थे और आपने लाहौर के एक प्रिंटिंग प्रेस पे जिसकी एड्रेस तक लोग देते हैं वहां बैठ के फेक फोटोशॉप अपनी तस्वीरें की थी और बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की नाजेबा तस्वीर आपने हेलीकॉप्टर से फिकवाई थी, आप वही मियां नवाज शरीफ साहब हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अगर आपका वही चाल चलन है, हमें इस पर भी इतराज नहीं, आपका जाती फेल है, आपको अगर यही अदा पसंद है सियासत में, आप इसी तरह सियासत करना चाहते हैं बिल्कुल जारी रखें, लेकिन आपको यह बात जहन में रखनी चाहिए कि 1990 और 2023 के दरमियान 34 ईयर्स का डिफरेंस है। 34 ईयर्स एक बहुत दो जनरेशन जवान हो जाती हैं, इन 34 ईयर्स में हमारी जो जनरेशन इस वक्त जवान हो चुकी है उसके सामने ये सीता वाइट, उसके सामने ये रेहम खान, उसके सामने ये आयशा गुलालाई, उसके सामने ये खावर मानेका, ये सब जीरो हैं। ये कौम ये जनरेशन इस बात को इंतहाई नापसंदगी की नज़र से देखती है। उस वक्त आपने हमारे बुजुर्गों को और हमारी उम्र के और हमसे बड़ी उम्र के लोगों को बरगला लिया था, इस जाल में फंसा लिया था और उनसे वोट एंटी बेनजीर भुट्टो आपने वोट कास्ट करा लिए थे और आपने मियां नवाज शरीफ साहब आपने उस वक्त इलेक्शन जीत लिया था, लेकिन अब शायद आप वो ना कर सके, आप उस तरह का फायदा अब नहीं उठा सकते, आपकी जनरेशन
मगर
तैयार नहीं है।
दो बातें दो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, दो बातें, एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ ये वही खावर मानिका है जब इनकी शादी हुई तो खावर मानिका ने कहा था कि बुशरा बीबी इज अ पायस वुमन और हमारी बाकायदा डाइवोर्स हुई और उन्होंने पूरी की पूरी इद्दत पूरी की, तो एक शख्स कैसे अपने अल्फाज, एक बात, एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस इट एट ऑल। मलिक रियाज साहब ने भी इंटरव्यू दिया है, मेरा ख्याल हर इंसान अपने अपने मामलात से बरी होने के लिए एक आके इंटरव्यू दे देता है, एंड दैट्स फॉर इट इज। जी आप बात अपनी मुकम्मल कर लीजिए।
अच्छा, इसमें एक और बात जो है वो लोगों को उसका, ये तो हमने पॉलिटिकली बात कर ली, टेक्निकली खावर मानिका का ये इंटरव्यू इमरान खान के हक में गया है, केस में जो उनका इद्दत का केस है उसमें, इस इंटरव्यू में ये साबित किया है खावर मानिका साहब ने कि ये निकाह जो है इद्दत के 46 दिन बाद हुआ है। अब केस ये था कि जी 90 दिन पूरे नहीं हुए, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अल्लाह दाद वर्सेज मुख्तार नाम का एक केस था, केस नंबर 1992 SCMR 1273, ये केस का नंबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रफीक तारड़ साहब जो साबिक सदर पाकिस्तान है, मियां नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास थे, सता तारड़ के बुजुर्ग थे, रफीक तारड़ साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वो शरीयत अपीलेंट कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसके सरबराह थे और उनके साथ दो नीचे जज साहबान थे शरीयत अपीलेंट बेंच में। उस शरीयत अपीलेंट बेंच में एक थे जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहर भेरा शरीफ वाले जो अल अजहर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे और जस्टिस थे शरीयत कोर्ट में, दूसरे थे मौलाना तकी उस्मानी, ये जस्टिस तकी उस्मानी, ये दोनों शरीयत कोर्ट के मेंबर थे और उस शरीयत बेंच के हेड जो थे वो रफीक तारड़ साहब थे। उसमें अलादाद वर्सेज मुख्तार केस में ये तय हुआ था, ये फैसला सुनाया गया था कि 39 दिन की इद्दत जायज होती है। उस फैसले के तनाजर में अगर आज 46 दिन बता रहे हैं अपने खावर मानिका साहब, तो इमरान खान के खिलाफ तो इद्दत का केस खत्म हो गया। तो बेसिकली इमरान खान को कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है, कोई अल्लाह ताला मदद करता है, कोई खुफिया मदद उसके पहुंच जाती है कि ये उसके खिलाफ बात करते हैं, अल्टीमेटली पता चलता है कि वो बात तो इमरान के हक में निकली। पब्लिकली लूज किया इन्होंने जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहते थे, लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। टेक्निकली अब कोर्ट में जाएंगे तो लोग हवाला देंगे उसका कि ये देखें ये 46 दिन कह रहे हैं, 39 दिन की इद्दत जायज है पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है,
शुक्रिया,
इस बात में यूज किया गया है। इसी तरह सियासी तौर पर भी लोग मजीद इमरान खान के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये एक टॉपिक ऑफ द टाउन था। दूसरा इस पे मैं बात करना चाहता था,
टाइम ही खत्म हो गया, आप जरा अगर एक मिनट में कवर कर लें, देयर आर टाइम्स के वी हैव टू कवर दिस। जी आप कवर कर लें एक मिनट में।
मैं कह रहा था कि एवन फील्ड और लजीजिया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ साहब की हियरिंग हो रही है और वहां जो अमजद परवेज साहब जो इस वक्त वकील हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, ये वो वकील है जो इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस जब चल रहा था तो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट अमजद परवेज साहब कर रहे थे। इमरान खान के खिलाफ केस हो तो अमजद परवेज साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फीस लेके इमरान खान के खिलाफ केस लड़ते हैं, और जब मियां नवाज शरीफ साहब को बचाने का केस हो तो वही अमजद परवेज साहब जो हुकूमत पाकिस्तान से फीस लेते हैं वो यहां मियां नवाज शरीफ साहब की वकालत आके करते हैं। अब परसों मंडे से उसकी हियरिंग बाकायदा डे टू डे शुरू हो जानी है और उसमें उन्होंने कहा है अपने अमजद परवेज साहब ने कि मुझे सिर्फ दो दिन चाहिए बहस के लिए। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा मैं बिल्कुल टाइम जाया नहीं करूंगा क्योंकि जल्दी है, उन्हें जल्दी जल्दी मियां नवाज शरीफ साहब को क्लियर करवाना है। जज साहब पूछ रहे हैं आमर फारूक साहब कि जल्दी जल्दी से डे टू डे मैं बाकी सारे काम छोड़ दूंगा, ये केस सुनूंगा। और जब नैब के नुमाइंदे से वहां पूछा गया कि आपको कितना टाइम चाहिए तो उन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ आधा घंटा चाहिए, और जब उन्होंने आधा घंटा कहा तो पूरे हाल में उसमें कोर्ट में मौजूद लोगों ने कहके लगाए कि ये नैब है जो अपने मुल्जम के खिलाफ सिर्फ आधा घंटा बहस करना चाहती है क्योंकि वो मुल्जम को सजा दिलवाना ही नहीं चाहते। ये अदा है हमारी नैब की। अगर इस तरह के सिलसिले चलने हैं तो फिर पाकिस्तान को, अगर आप जैसे आरिफा मुजफ्फर बहन, आप जैसे लोग अगर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं।
मैं तो बिल्कुल कहती हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कुलभूषण यादव का केस जो इंडिया से लॉयर लड़ रहा है विदाउट एनी पेमेंट लड़ रहा है, मगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला जो लॉयर लड़ रहा है उसने लाखों की रुपयों की उसने लाखों लाख नहीं लाखों रुपयों की फीस हासिल की है। मैं माजरत के साथ, हमारा मॉरल फाइबर वीक है। सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
हम जो है कौमी खिदमत हमें बिल्कुल याद नहीं है, जाती खिदमत करते हैं और पैसों की खातिर करते हैं। अभी अगले हफ्ते, इसी हफ्ते बल्कि एक केस आ
रही
है, बुक की लॉन्चिंग हो रही है इस्लामाबाद में, हाजरा खान की एक नई बुक आ रही है वेयर द ओपियम ग्रोज। वो पूरी बुक ही इमरान खान की और इमरान खान के मंशियात में दिलचस्पी और वो सारे मामलात, उसके खिलाफ हाजरा खान की फाइव स्टार होटल में इस्लामाबाद में लॉन्चिंग हो रही है 24 नवंबर को।
बहुत
इमरान खान के खिलाफ पै दर पै जो हमले कर रहे हैं लेकिन हर हमला इनका नाकाम ही हो रहा है और इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हो रहा है।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फयाज बिलाना साहब से हमने आपकी बातचीत कराई और बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का जिनके तवसुस ही है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं बाजूकात स्पॉन्सर्स के साथ हक तलफी हो जाया करती है। डॉक्टर नाजिया रहमान, वो कहते हैं कि साल खत्म होने के और अगर आपने अपनी इंश्योरेंस को लूज करना है डेंटल को या गेन करना चाहते हैं, डॉक्टर नाजिया रहमान शी हैज टू क्लिनिक एज पर योर कन्वीनियंस 150 येलो एवंस एंड दूसरा फाइनेंशियल ड्राइव इन मिसेस सागर रोड पे। डॉक्टर नाजिया फजल वदूद, डॉक्टर नाजिया रहमान आप गूगल कर लीजिएगा, फजल वदूद इंश्योरेंस से मुतालिक, लाइफ डिसेबिलिटी क्रिटिकल, यू मस्ट हैव इट। आजकल तो यंग लोगों को और बल्कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों ने आजकल के जो बड़े हो रहे हैं उन्होंने पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, बाय एट द यंगेस्ट एज लाइफ या क्रिटिकल इलनेस जरूर अपने बच्चों को ले लीजिएगा। अल्लाह इनको बढ़ता फलता फूलता रखे और जब इनके अपने बच्चे होंगे तो ये बढ़ा लेंगे। फजल वदूद से आप रब्ता कर लीजिएगा। जैस्मीन परमार मॉर्गेज के हवाले से, शी इज अ वेरी फाइन पर्सन मॉर्गेज के लिए। जैस्मीन परमार 6479235659। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लैक फ्राइडे की सेल है, यू मस्ट अवेल दैट टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स। डॉक्टर मुजीब काजी ऑफकोर्स फैमिली डेंटिस्ट है, अगेन टू लूज योर बेनिफिट डेंटल बेनिफिट और टू गेन इट डॉक्टर मुजीब काजी से रब्ता कीजिएगा। इनके भी दो क्लिनिक हैं, दोनों ब्रैम्पटन में ही हैं। डेंटल सर्विस के लिए डॉक्टर मुजीब काजी, इम्प्लांट crowns, bridges, dentures, for anything. And last but not least, Village Taste, हमारे sponsor है Village Taste का, बहुत शुक्रिया। Stay tuned, Shazia will be with you in a minute.
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ
मगर कब?
अब कुछ कहना मैंना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको HearMax Hearing Center पर।
Ultimate hearing solution. No obligation, complimentary hearing test.
HearMax Hearing Center, call Shiraz 416-792-8792.
Ringing, buzzing, hissing. Time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate hearing solution. 416-792-8792.
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला।
ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए आ जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फलो फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा है। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज़ नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर पर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव रिटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
मजे मजे के टिक्के, मजे के कबाब,
खाना हो तो आ जाओ शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब, बिरयानी, दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
जी समय नाजरू, वेलकम बैक अगेन। एंड सब 4:36 और 31 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। बड़ी तेज भाग रहा है, रफ्तार कौन सी हो, तेज गाम की तरह। और मगर न्यूज सारी देंगे हम आपको, परवाह ना करें। पौने 5 बजे याद रखें, 5:45 हमने अपना स्टूडियो चेंज करना होगा फ्रॉम हेयर टू द अदर स्टूडियो, जहां आपने डायल करना होगा 6478724900, क्योंकि आपने न्यूज तो सारी कंप्लीट सुननी है। थोड़ी सी न्यूज अब से लेके 5:45 तक, 5:45 के फौरी बाद जब आप डायल करेंगे 6478724900, उस पर बकिया की न्यूज आप सुन सकेंगे। या आप चले जाएं www.eawaz.com पे, वहां दो बटन नजर आएंगे आपको, एक लिसन लाइव का और एक वॉच लाइव का, जिधर भी आपने जाना हो उधर ही से। तो मेरा ख्याल है कि अब और बातचीत जो है बाद में करेंगे हम, फिलहाल हम लिए चलते हैं आपको वन एंड ओनली शाजिया मलिक जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम मजीद भाई, आप जैसे लोग जो 40-40 साल से बने बैठे हुए हैं ना एक दूसरे के साथ, आप लोगों के लिए एक आई है, वो बड़ी अच्छी किस्म की एक मीम आई है। वो कहते हैं जी, किसी ने कहा है कि मैचेस आर मेड इन हेवंस।
हाँ जी,
तो नीचे किसी दिल जले ने कहा, जिसकी 40 साल से नहीं चल रही थी शादी, उसने कहा मतलब ये कम होते भी ठीक नहीं ठीक नहीं चल रहा
नहीं
उतने भी ठीक नहीं चल रहा काम है, क्योंकि जोड़े इतने खराब बन रहे हैं कि लोगों के अब जल्दी जल्दी, खासतौर पे आपको पता है पेंडेमिक में कितने डिवोर्सेज हुए थे।
अच्छा,
तो बहुत सारे डिवोर्स। हाँ जी, यहाँ पे तो अदालतें इतनी बिजी हो गई थी, लॉयर्स ने खूब पैसा बनाया है जी, किसी का काम तो चल रहा था देखो पेंडेमिक में। थोड़ा मेरा नहीं सी चल रहा, किसी का चल रहा था।
ठीक है ठीक है।
हाँ जी, तो इसलिए जो है ना, आप अब ये जो काम से भी अब आप डिवोर्स लेने की बातें कर रहे हैं ना माजिद भाई, ये ना करें, काम करें प्लीज।
अच्छा,
और मुझे भी काम करने दें।
आप
मुझे इतना कोई डिस्टर्ब करते हैं कि मैं काम ही नहीं कर
सकता। आपको काम करना है
मुझे काम करना है, आपकी तरफ बैठ के गाने नहीं गाने। आपके कमरे से तो सारा दिन गानों की आवाजें आ रही होती हैं, तो वो काम मुझे नहीं करना।
वो दिन का वो होता है वो कि अच्छा, आज किस मूड में है,
मूड में है, है ना, हाँ जी,
तो
हाँ जी,
उस मूड का गाना चल रहा हो।
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है।
दुखी है दिल
हाँ,
तो फिर
अजरी अब मेरो रो रो के दिल भी आ रहा है जी।
हाँ जी हाँ जी
हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है। और जिस दिन जो है वो आपका दिल बड़ा खुश होता है उस दिन आपके जिस दिन आपका मूड ठीक हो रहा है उस दिन आवाजें आ रही होती हैं, बदतमीज दिल बदतमीज दिल मनी ना मनी ना, मतलब मजद भाई आपने काम नहीं करने देना है।
समय नाजरीन, आज की न्यूज मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इनका तो मूड नहीं है,
नहीं है
इनका कोई जरा सा ही मूड नहीं है न्यूज सुनाने का, आपको मैं सुनाता हूँ सारी न्यूज।
अच्छा जी नहीं, पहले सुन लो, पहले विलेज टेस्ट का आप पहले मैसेज सुन ले। ये कहते हैं जी ऑन्टारियो का जो है लार्जेस्ट हलाल ये पाकिस्तानी बफे है, और अब इनकी नई लोकेशन भी आई है, तो ओकविल में अगर आपको जाना है तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। इनका नंबर है 2294 लेकशोर रोड वेस्ट, और इनका नंबर है 9052262294। और जनाब नान एंड कबूब माजिद भाई का बड़ा ही फेवरेट ये जॉइंट है, यानी के फूड जॉइंट है ऑफ कोर्स। इनकी जो नई लोकेशन है वो आ गई है 4050042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट फिर्मी 3, और इनका फोन नंबर है 4162858191। इसके अलावा चांदनी विक्टोरिया बड़ा जबरदस्त यहां पे जो है इनका ये गॉर्जियस किस्म का हॉल है, 1400 के करीब लोगों को आप बुला सकते हैं, यानी कि 1400 प्लस 3.5, यानी कि मैं माजिद भाई और आमिर उनको भी अगर आप बुलाना चाहें तो आप बुला सकते हैं जनाब। बड़ी जबरदस्त फैसिलिटीज हैं, 32 रूम्स लग्जरी होटल है, और इनका नंबर है 6479653823। ठीक है जी, अब हम आपको लेके चलते हैं जी खबरों की तरफ। वैसे तो आज खबरें जो थी वो जरा जो आज ट्रूस हुआ है उससे रिलेटेड थी और कनाडा पे उसका क्या असर होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला है कि ये जो पीस और रेनबो एंड क्वींस्टन विंगस्टन ब्रिज है इसके ऊपर एक एक्सप्लोजन हुआ है कनाडा यूएसए के बीच में, तमाम की तमाम ट्रैफिक जो है इस वक्त बंद कर दी गई है। और रॉन रेनस जनरल मैनेजर पीस ब्रिज जो है उन्होंने कहा जी कि तमाम दोनों साइड पे ब्रिजों को जो है वो शट डाउन किया गया है। एफबीआई बफलो फील्ड ऑफिस जो है उसने अपने एक्स के ऊपर कहा है कि ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये जो व्हीकल के अंदर एक्सप्लोजन आया इसकी क्या वजह है। सीबीएसए के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि वो लाइज कर रहे हैं यूएस काउंटर पार्ट्स के साथ। एफबीआई बहरहाल इसको जो है लीड कर रही है इस इन्वेस्टिगेशन को, और बहुत सारी एजेंसीज न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस, एफबीआई ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स, यूएस ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, नायग्रा फ्रंटियर ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, ये सब जो है मिलकर अब इसके ऊपर काम कर रही है। इसके ऊपर बात करते हुए ट्रूडो साहब की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं जेना ग्लासबे, उन्होंने कहा है कि ट्रूडो साहब जो हैं उनको ब्रीफ किया गया इसके ऊपर, और पीएमओ जो है वो इन टच है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है वो इन टच है, इन कॉन्टेक्ट है विद यूएस ऑफिशियल्स। ट्रूडो साहब ने आज हाउस ऑफ कॉमन्स पे इस पे बात करते हुए कहा कि ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है और बात है, और हम जो हैं कनाडा जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं की लेकिन कनाडा की जो एजेंसीज हैं उन्होंने कहा है कि हम इस एक्सप्लोजन को थ्रेट के अंदर जो हमारी क्लॉजेज हैं उसमें जो टेररिज्म की क्लॉज है उसके अंडर हम इसको देख रहे हैं। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जो हम जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मतलब ये
इनिशियल जो रिपोर्ट्स है ना शादी जी, इनिशियल रिपोर्ट्स में दो लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे
जी, जी, जी,
जब एक्सप्लोजन हुआ है और दोनों लोगों की डेथ उधर ही हो गई ऑन द स्पॉट, मगर दिस इज वेरी इनिशियल रिपोर्ट। और एक शख्स जो बॉर्डर पे काम करता था और उसको जरा कुछ जख्मी हालत में पाया गया है, तो ये कहना कि भाई फौरी तौर पर इसको टेररिज्म में ले जाए क्योंकि हो सकता है अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही
है। नहीं, कैनेडा इज ऑपरेटिंग अंडर, उनका सेंटेंस आया है अभी इस वक्त जस्ट नाउ, कैनेडा इज ऑपरेटिंग अंडर एजम्पशन इंसिडेंट्स टेरर रिलेटेड इवेंट।
हाँ जी, मगर जो अगर आप इनिशियल जो रिपोर्ट, क्योंकि एक बजे हुआ ये
जी, जी, जी,
तो उस वक्त तो इनिशियल रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हो सकता है कोई मेडिकल रीजन हो या ये कि वो गाड़ी उनसे बहुत तेज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो, तो अब अगर इसके
अपडेट आया ये
अब अगर उसके अंदर अगर कोई मवाद था ऐसा जो फटने वाला,
तो उसके बाद तो टेररिज्म हो जाएगा।
हाँ, अस्यूम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वी आर अस्यूमिंग कि ये टेरर रिलेटेड हो सकता है और उसी के अंदर हम जो इसको कर रहे हैं। अच्छा जी, आज जो है गाजा के अंदर ट्रूज आई है, आपको पता ही है कि हमास और इसराइल दोनों ही मान गए हैं कि 4 दिन का जो है वो पॉज देने की जरूरत है। इसके अंदर अब जो ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा है उसने कहा है जी कि ये अच्छी खबर है कैनेडियंस के लिए और बाकी भी जो फॉरेन नेशनल्स हैं कि वो अब रफा का बॉर्डर जो है जल्दी से क्रॉस करके आ सकेंगे। अभी तक ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा ने कहा है कि कुछ लोगों का बारे में हमें पता है, लेकिन जिन कैनेडियंस के बारे में पता है कि वो गाजा के अंदर है उसमें से एक जो है वो मिसिंग है। अब पता नहीं है कि वो जो एक मिसिंग है उसकी डेथ हो गई है या उसको हॉस्टेज लिया गया है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलानी जोली ने कहा है कि ये जो डील हुई है ये अलाउ करेगी इनको गाजा से निकलने के लिए और तकरीबन रफली अभी भी 200 कैनेडियंस जो हैं गाजा के अंदर हैं। और लेकिन जो आज की लिस्ट है एज वी स्पीक वेंसडे की जो लिस्ट थी उसके अंदर जो फॉरेन नेशनल्स की लिस्ट जो है वो आज छापी गई है उसके अंदर कैनेडियंस का कोई नाम नहीं था, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अब इमीडिएटली जो गाजा को क्रॉस करके इजिप्ट के अंदर आ रहे हैं। बहरहाल कैनेडा का कहना है कि हमारे लिए होप है, हम अपने सारे लोगों को अब जल्दी से निकाल सकेंगे। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज है जी और इसके मुताबिक इंडिया जो है उसने रिस्टोर कर लिया है अपने ई वीजा फैसिलिटीज। इसकी डिटेल्स हम बताएंगे आपको ऑन द अदर साइड।
और जैसे मैंने आपसे कहा कि एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे यहां पर और ब्रेक के फौरी बाद हम आपको ले चलेंगे दूसरे स्टूडियो में जहां पर आपने डायल करना होगा 6478724900 और इस पे डायल करके आप बाकिया की न्यूज आप सुन सकेंगे।
WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
जी साहब नाजरीन, वेलकम बैक अगेन एंड दिस सेगमेंट ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक मेकर्स विद ए परफेक्ट टच। अगर आपने किचन, बाथरूम, काउंटर टॉप्स, क्लोजर रेनोवेशन वगैरह करवानी हो तो आप लेटेस्ट 3D कंप्यूटर्स के साथ डिजाइन किया हुआ इनका काम देख सकते हैं आप। 12 मंथ्स के लिए नो पेमेंट नो इंटरेस्ट, इसका भी फायदा उठाएं आप। राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक 6473008473। और इसके साथ साथ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज, अगर आपने सेल ब्लैक फ्राइडे की सेल लेनी हो तो सुल्तान भाई के पास पहुंच जाइए ब्रैम्पटन के इलाके में 9054502828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज। और इसके साथ साथ डॉक्टर पद्मा झा 3410 शेपर्ड एवेन्यू शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर, दांतों में कोई भी खराबी हो ईस्ट एंड में डॉक्टर पद्मा झा 4162997466 इनका फोन नंबर है।
हाँ जी, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे खबरों से पहले कि इंडिया जो है उसने रिस्टोर किए हैं अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वीजा सर्विसेज थी फॉर कैनेडियंस। आज इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसने आज इसकी बात की, उन्होंने कहा कि ये जो दोनों कंट्रीज के बीच में 2 महीने पहले एलिगेशंस आए थे जिसमें कि कैनेडा ने कहा था कि निजर साहब की डेथ में कुछ हमको लिंक्स मिले हैं इंडिया से, हरदीप सिंह निजर जो हैं सरी के अंदर जो मारे गए थे, तो इंडिया ने इसको कैटेगोरिकली नो किया था, लेकिन टेंशन बहुत इसके बीच में आ गए थे और उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज जो थी सस्पेंड उन्होंने कर दी थी। और इंडिया का कहना है कि निजर साहब जो है उनके लिंक्स टेररिज्म के साथ हैं और उन्होंने एलिगेशंस कनाडा के ऊपर लगाए थे कि आपके मुल्क में बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है इन लोगों के लिए। बहरहाल जी, अब जो है ये सर्विस जो है ओपन की गई है और इंडिया ने कहा जी कि हम ये बैन जो है अब ईज कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज को खोलते हुए ऑफर किया जाएगा अब ये एंट्री बिजनेस मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजाज टू कनेडियन नेशनल्स। तो इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी है तो अभी उसके ऊपर जो है बातचीत कनेडियन हाई कमीशन सोच के फिर और बताएगी और जैसे जैसे इस पर अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। लेजर एक पोल आया है और उसने कनेडियन से पूछा है कि क्या ये जो अभी फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम कुछ एग्जेम्पशंस दे रहे हैं होम हीटिंग ऑयल्स पे फ्रॉम इट्स प्राइस ऑन कार्बन, जो कार्बन प्राइसिंग थी, तो इसको आप वेलकम करते हैं कि नहीं करते हैं। जाहिर है कि लोगों ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया। यह सर्वे जो था तकरीबन 1531 लोगों के ऊपर किया था, लेकिन जब सर्वे उन्होंने किया तो उनको बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा जी कि 48% लोग जो थे वो कहते थे हमें तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। 63% लोगों ने कहा कि हां हमको पता है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। 37% को जिनको पता था उन्होंने अपोज किया इसको, उन्होंने कहा क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है दिस इज अ रियलिटी और ये इधर जो था वो रहना चाहिए था। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सपोर्ट थी वो उन लोगों के बीच में थी जो कि अंडर 44 थे। और इसके अलावा जो है लोगों ने कहा जी कि ज्यादातर जो ये कार्बन प्राइसिंग है इसका मैकेनिज्म जो है वो समझने की जरूरत है। तो जब ये पूछा गया कि क्या आपको इस मैकेनिज्म की समझ आती है तो 44% ने कहा कि हां हमको बड़ी अच्छी इसकी कार्बन प्राइसिंग की मैकेनिज्म समझ आती है। 56% ने कहा या तो हम पूर्णली समझते हैं या हम बिल्कुल इस चीज को समझते नहीं है। यानी कि मतलब वही गल है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो अगर पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रॉब्लम है तो बस फिर वो खुशी है। अच्छा जनाब, आज जो है वही जो सबसे बड़ी खबर थी दुनिया के ऊपर के जी हमास और इसराइल के बीच में ट्रूस हो गया है, तो जरा हम आपके लिए थोड़ा सा ये सारा ट्रेल करते हैं चीज के ये हुआ क्या, हुआ कैसे कि ये एकदम से ट्रूस की तरफ चीज है। ये एकदम से नहीं गई है ट्रूस की तरफ, इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल थे, खास तौर पे कतारी जो थे वो इसके अंदर लीड बनाए हुए थे। कल भी हमने आपको बताया कि कतर इसके अंदर कह रहा था कि हम आपको एक खुशखबरी दे सकते हैं। जब ये अटैक्स हुए हैं हमास के अक्टूबर 7 के, उसके इमीडिएटली बाद कतर जो है उसने व्हाइट हाउस को कॉन्टेक्ट किया था और उसने उनको कहा था कि जी देखें चलो जो कुछ भी हो गया लेकिन जो वहां पे हॉस्टेजेस बना लिए गए हैं यूएस को अपना यूज करने की जरूरत है इन्फ्लुएंस ताकि उनको कैप्टिव्स को छोड़ा जा सके। और कतर ने बहुत ज्यादा जो इसके अंदर काम किया, उसके बाद उसने हाथ जोड़े इजिप्ट के साथ भी, तो ये आज जो है हमास और इसराइल हुए। लेकिन इसके अंदर मेन जो रोल था वो यूएसए का भी था। कतर ने सबसे पहले जिस वक्त ये वाकया हुआ तो यूएस को फोन किया और उनको कहा कि हमको एक छोटा स्मॉल टीम जिसका के नाम हम सेल देंगे, एक सेल कॉन्टैक्ट सेल इस्टैब्लिश करने की जरूरत है जो कि प्राइवेटली इजरायलीज के साथ काम करेगा। और यह इतना सीक्रेटिव था कि उन्होंने कहा जी कि बाइडन की टीम से बहुत ही कम लोगों को इसके अंदर एंगेज किया जाएगा। उसके सिलसिले में फिर बाइडन साहब जो हैं उन्होंने अमीर ऑफ कतर जो हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी उनके साथ टॉक्स जो थी वो होल्ड की थी और उसके फौरन बाद उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी और उन्होंने कहा था जी कि ये हमको लड़ाई अगर आपको जारी रखनी भी है तो हॉस्टेजेस को छुड़ाना जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बूढ़े लोग भी शामिल थे। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन जो थे उन्होंने डायरेक्ट किया था मैकगर्क को जो कि एक दूसरे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिशियल थे और उन्होंने फिर आबे से कहा जोश गेल्सनर्स को, वो भी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो थे वो थे। और ये छोटी सी टीम यूएसए के अंदर जो कि सिर्फ कहती थी कि हम बाइडन साहब को और कतर के अमीर और उनके साथ जो एक दो लोग हैं उसके साथ बात करेंगे और किसी के साथ बात ना करेंगे ताकि चीजें लीक ना हो जाएं और खराब ना हो जाएं। यूएस के जो मिडिल ईस्टर्न एनवॉय थे ब्रेट मैकग्रिव जो थे वो कॉन्स्टेंटली कतर के साथ और यूएस के जो बाइडन साहब हैं उनके साथ इन टच थे और रोजाना के बेसिस के ऊपर वो ना सिर्फ बाइडन साहब को बल्कि जो हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अल अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी और उनके जो अमीर हैं शेख तमीम उनके साथ इन टच रहते थे और उनको रिपोर्ट्स देते रहते थे। फिर क्या हुआ जी कि फिर बाइडन साहब जो हैं उन्होंने ट्रैवल किया तेल अवीव में और उन्होंने बातचीत की नेतन्याहू से। उन्होंने कहा जी कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आने दो और कैप्टिव्स को छुड़ाने दो। कतारी और इजिप्शियन मीडिएशन जो थी वो भी इसके अंदर कॉन्स्टेंटली काम कर रही थी। सीआईए के डायरेक्टर बर्न्स जो हैं फिर उनकी मुलाकातें दोहा में कतारी लीडर्स के साथ हुई और कतर में ही उनकी मुलाकात मुसाद के जो बर्निया हैं उनके साथ भी हुई। बाइडन साहब ने उसके बाद फिर फोन किया अमीर ऑफ कतर को और उनको कहा जी कि आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कितने नाम हैं, कितने लोग हैं और कितने कैप्टिव्स हैं, क्या नंबर है उसका फाइंड आउट करें ताकि हम नतन्याहू साहब को बताएं। और नतन्याहू को उन्होंने कहा जी कि एक ट्रूस और उन हॉस्टेजेस का निकल आना एक बड़ी अच्छी डील है और आपको मान लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बाइडन साहब ने अमीर ऑफ कतर को कहा कि आप अपना प्रेशर भी, क्योंकि आप सारे अरब्स हैं तो आप भी अपना थोड़ा प्रेशर यूज करें इसराइल और हमास दोनों के ऊपर कि यह डील जो है यह ले ली जाए। कायरो के अंदर मैकग्रिट जो है फिर उन्होंने जाके मुलाकातें की इजिप्ट के जो इंटेलिजेंस चीफ थे अब्बास कामिल के साथ और फिर इन सब ने जो है खासतौर पर कतर ने जो बात की हमास के लीडर्स के साथ और इसराइल के लीडर्स के साथ उसमें फिर जो हमास के लीडर्स थे उन्होंने कहा जी कि हम इस डील को कबूल करने को तैयार हैं। यह बात जो थी जब इसराइल को बताई गई और बाइडन साहब ने नतन्याहू से कहा कि इट्स अ वेरी गुड डील तो नतन्याहू साहब भी इसके ऊपर एग्री कर गए और फाइनली फिर जो है यह आज ट्रूस जो है सामने आया है। तो जनाब ये 7 अक्टूबर से ही बातचीत यानी कि शुरू हो गई थी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अच्छा जनाब, साउथ अफ्रीका की जो पार्लियामेंट है उसने एक मोशन पास की है इन फेवर ऑफ क्लोजिंग इसराइल्स एम्बेसी इन प्रिटोरिया और उन्होंने कहा जी कि हम तमाम के तमाम जो अपने डिप्लोमेटिक टाइज हैं इसराइल के साथ कट कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ वो जुल्म कर रहा है गाजा में। इससे पहले कल हमने आपको उनके प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा के बारे में भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ भी इसराइल कर रहा है गाजा में ये जीनोसाइड के अंदर आता है। तो आज इस वक्त रेजोल्यूशन ये आई तो ये पास हुई 248 वोट्स इन फेवर एंड 91 अगेंस्ट और इसके अंदर जो अपोजिशन थी वो की इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स ने जो कि लेफ्ट विंग पार्टी है एंड दिस वाज बैक्ड बाय रूलिंग अफ्रीकन नेशनल पार्टी। और इसके अलावा जो स्विस गवर्नमेंट है उसने आज कहा है कि हम भी एक रेजोल्यूशन जो है पास कर रहे हैं जिसके के अंदर हमास उसकी एक्टिविटीज और सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन जो है उसको बैन किया जाएगा और स्विस सॉयल जो है उससे किसी तरह की भी हमास को सपोर्ट नहीं शो की जाएगी। तो एक तरफ एक मुल्क जो है इसराइल के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास कर रहा है दूसरी तरफ जो है वो इसराइल के हक में पास कर रहा है। आज एक बहुत ही जो है बैड किस्म का वाकया मैनहट्टन के अंदर हुआ और ये किया एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल ने जो कि बहुत बड़ी पोजीशंस पे रहा है। फॉर्मर सीनियर यूएस ऑफिशियल जो हैं उनको अब बहुत ज्यादा बैकलैश आ गया है क्योंकि वो एक हलाल वेंडर के पास खड़े हुए थे और उसको बहुत ही गंदी बातें कर रहे थे। इनका नाम है स्टुअर्ट स्टेलविट्स और ये इन्होंने सर्व किया हुआ है एज डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टाइन अफेयर्स। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं साउथ एशिया के डायरेक्टरेट में अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने आज एक वेंडर जो कि इजिप्शियन उसका था नेटिव था उसको बहुत गंदी बातें की और उसने यहां तक कहा कि हमने अभी तक 4000 पैलेस्टीनियन बच्चे मारे हैं और ये इनफ नहीं है, यानी कि हम और बच्चे आपके मारेंगे। और फिर उन्होंने नाउजबिल्ला बहुत ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके खिलाफ बड़ी गंदी बातें की और वो लड़का जो है कॉन्स्टेंटली वो वेंडर कहता रहा कि तुम यहां से जाओ मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहने लगा कि तुम्हारी जो इजिप्शियन जो इंटेलिजेंस है मुखबरात उसको मैं बुलाऊंगा, जानते हो उसके बारे में, वो तुम्हारे बाप के घर में जाके तुम्हारे बाप के नेल्स खींचेगा एक एक करके और तुम अंग्रेजी सीखो, तुम इतने जाहिल क्यों हो, तुम्हें वापस भेजना पड़ेगा तो जब तुम्हारी डिपोर्टेशन हो रही होगी तो तुमको अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। ये सारी वीडियो जिस वक्त अब सोशल मीडिया पे आई है आज तो उसके ऊपर काफी जो है बैकलैश आया है कि एक सीनियर बंदा, इतना सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जिसने कि इतनी टॉप पोजिशन पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजिशन पर भी जिसने काम किया हुआ है वो इतनी खराब बातें कैसे कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अमरीका जो है एक इमिग्रेंट कंट्री है और दोनों ओपन आर्म्स से वैसे जो सच है उसने लोगों को एम्ब्रेस किया अपने कंट्री में और ऐसे किसी का कहना बहुत ज्यादा जिसपे शोर मचा। फाइनेंशियल टाइम्स की जनाब एक आज रिपोर्ट आई है और इसने भी आज दुनिया में बहुत ज्यादा खलबली मचाई क्योंकि एक तरफ तो हिंदुस्तान कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि हमारा कभी भी कोई हाथ नहीं होता है फॉरेन सॉइल के ऊपर कि हम इंटरफेयर करें, लेकिन कनाडा ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे निजर साहब की डेथ के ऊपर और अब फाइनेंशियल जो टाइम्स की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि एक और जो ये जिनके बारे में हम कल बता रहे थे गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब जो कि खालिस्तान का मुद्दा आगे लेके चल रहे हैं उनको भी मारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अलेजली इन्वॉल्व थी, लेकिन यूएस अथॉरिटीज ने यह पूरे का पूरा प्लॉट जिसमें कि अलेजली न्यू दिल्ली इन्वॉल्व था इसको थॉट किया और उन्होंने वार्निंग बल्कि भेजी हिंदुस्तान को कि हमारी सॉइल के ऊपर ऐसा कोई काम ना करना. दिस इज अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स. तो चीजें जो हैं दिन ब दिन जनाब खुलती ही चली जा रही हैं. अब इन्होंने कहा जी कि ये जो सारा मामला था ये एफबीआई के सामने आया था और एफबीआई जो था उसने रजिस्टर किया था अपना प्रोटेस्ट मोदी जी के सामने जब वो स्टेट विजिट पे उनको बाइडन साहब ने जून में बुलाया था और उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई हरकतें जो हैं हम अमेरिका के अंदर होते हुए देख रहे हैं. ये सारी की सारी रिपोर्ट आज फाइनेंशियल टाइम्स ने उस वक्त सामने लेकर आई है जब आपको पता है कि दो महीने पहले कैनेडा ने भी इस तरह के एलिगेशन लगाए थे. यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो कह रहे हैं जी कि ये सारी की सारी चीज जो है अब सामने आ गई है और इसके ऊपर काम एक करने की जरूरत है. इस वक्त गुरप्रताप सिंह पन्नू से पूछा गया कि क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान आपको मरवाने की कोशिश कर रहा है तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि आप यूएस अथॉरिटीज से पूछें. उनको जब कहा गया कि आपने क्या यूएस अथॉरिटीज को बताया कि आपको प्रोटेक्शन दें तो उन्होंने कहा जी कि यूएस अथॉरिटीज की तरफ से मुझे ऐसी कोई वार्निंग आई तो नहीं है लेकिन मैं उन्हीं को कहता हूं कि वो इन चीजों के ऊपर देखें और जो इनके इंडियन ऑपरेटिव्स हैं यूएस सॉइल के ऊपर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये उनको देखने का जो है वो काम है. आपको पता ही है कि दोनों ही जो हरदीप सिंह निज और ये गुरप्रताप सिंह पन्नू जो है ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं और इसलिए ये जो है टेररिस्ट समझे जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर. बाबा यूएस जो है उसने अब ये जो सारे का सारा प्लॉट अनवेल किया है इन्होंने भी कहा है कि हमने भी अपने एलाइज के साथ जो है इसको शेयर किया है. तो थिंग्स आर गेटिंग सीरियस नाउ, वेरी वेरी सीरियस. ओके जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय अदनान अलवी साहब. अदनान अलवी साहब कहते हैं कि गरीब होकर रहने की जरूरत नहीं है, आपको अमीर होकर रहें. ठीक है, लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और कहते हैं जी कि अगर आपको कोई भी अच्छे सर्विसेज चाहिए तो आप उनको कॉल कर सकते हैं एट 416-301-0249. इसके अलावा ग्रिल एंड चिक जो है अब उसकी भी नई लोकेशन आ गई है. पहले वो ब्रैम्पटन में थे 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट पे और अब वो आ गए हैं 3525 प्लैटिनम ड्राइव पे मिसिसागा में. तो अगर आपको कॉल करना है इनको तो आप कर